हम सफर न्यूज रूम से मैं अंबिका, पेश हैं समाचार। आज दिन बुधवार, तारीख 4 जून 2025। इंस्टीट्यूट क्यूबेक के अनुसार क्यूबेक में नए स्थायी प्रवासियों की संख्या में लगातार वृद्धि करने से अस्थायी निवास पर निर्भरता कम हो सकती है। आज जारी की गई एक नए रिपोर्ट में IQ ने ऐसे संदर्भ में कई संभावित कार्रवाई के तरीके सुझाए हैं, जहां क्यूबेक और ऑटवा में हाल के वर्षों की तुलना में इमिग्रेशन फ्लो में गिरावट देखी जा रही है। एक पर्सपेक्टिव में IQ ने प्रस्ताव दिया है कि क्यूबेक टेम्परेरी रूप से उच्च स्थायी आवर्जन यानी कि परमानेंट रेजिडेंसशिप सीमा को 90,000 तक की योजना बनाए। इस लक्ष्य के साथ 60,000 की एक स्पष्ट पक्ष प्रवेक्ष होगा, जो पहले से ही मौजूद कुशल टेम्परेरी रेजिडेंस को यूनिफाई होने की अनुमति देने और स्थायी निवास तक पहुंच में देरी को कम करने के लिए। उनके अनुसार क्यूबेक अत्यधिक कुशल टेम्परेरी निवासियों के लिए स्थायी निवास में संक्रमण की सुविधा प्रदान कर सकता है। संस्थान का कहना है कि उसने ऐसे परिदृश्यों की भी खोज की है जहां क्यूबेक अपने टेम्परेरी इमिग्रेशन की सीमा को 35,000 या 60,000 पर निर्धारित करेगा, लेकिन उसका मानना है कि इससे प्रांत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा टेम्परेरी रेजिडेंस को लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वर्तमान में क्यूबेक में लगभग 600,000 अस्थायी निवासी हैं। पिछले कई महीनों से क्यूबेक के प्रीमियर फ्रांसवा लिगो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि क्यूबेक की नए लोगों को लेने की क्षमता अब खत्म हो चुकी है और अस्थायी निवासी आवास और सार्वजनिक सेवाओं पर प्रभाव डाल रहे हैं। मॉन्ट्रियल शहर इस समय ध्वनि की को संभालने के तरीके पर पुनर्विचार करने के लिए अपने सांस्कृतिक संस्थानों के लिए समर्थन प्राप्त करना चाहता है। प्लेटो मॉन्ट्रॉयल बरो में इस परिवर्तन के कुछ बायलॉज में चेंजेस कर रहा है, जिसका उद्देश्य निवासियों और शहर की जीवंत नाइट लाइफ के बीच बेहतर बैलेंस स्थापित करना है। अपडेट दृष्टिकोण ध्वनि को मापने और सहन करने के तरीके को बदल देगा। ये एक ऐसे सिस्टम का उपयोग करेगा जो परिवेशीय शोर और विशिष्ट आवृत्ति स्तरों दोनों को ध्यान में रखता है। संस्कृति के लिए जिम्मेदार मॉन्ट्रियल की कार्यकारी समिति की सदस्य का कहना है कि वर्तमान शोर उपनियम बहुत पुराना है, जो 1970 के दशक का है। उनका कहना है कि हमारा शहर अधिक घना है और हमारा पड़ोस अधिक जीवंत है, इसलिए ज़रूरत है कि हम इन चेंजेस को रिफ्लेक्ट करें। प्रस्ताव स्पेक्ट्रल इमरजेंस नामक एक अवधारणा पेश करेगा, जो न्यूयॉर्क और मेलबोर्न जैसे शहरों में पहले से ही उपयोग आने वाला एक माप उपकरण है। सभी ध्वनियों की मानने के बजाय ये शोर को 3 आवृत्ति बैंड में विभाजित करेगा। सुबह 7 से 11 बजे के बीच आयोजन स्थलों को परिवेशी शोर स्तर को 4 डेसिबल तक बढ़ाने की अनुमति होगी। ये सीमा रात भर में 3 डेसिबल तक कम कर दी जाएगी। वर्तमान कानून के तहत किसी आयोजन स्थल के बाहर सुना जाने वाला कोई भी संगीत इस तरह से चिन्हित किया जा सकता है। जबकि बार और रेस्टोरेंट अभी भी अधिकतम डेसिबल स्तरों के अधीन होंगे, प्रदर्शन स्थलों और कल्चरल स्पेसेस को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी के इस मॉडल से लाभ मिल सकता है। नियम में बदलाव से यह भी पता चलेगा कि उपद्रव के रूप में या फिर नॉइज के रूप में क्या गिना जाएगा। मौजूदा कानून के तहत किसी भी स्थान के बाहर सुना जाने वाला कोई भी संगीत इस तरह से चिन्हित किया जा सकता है। इस बीच कुछ अन्य समाचारों में क्यूबेक का ये कानून लागू होने जा रहा है, जो लोगों को ऑनलाइन पोस्ट की गई इंटीमेट पिक्चर्स को हटाने के लिए अदालती आदेश प्राप्त करने के लिए नए उपकरण प्रदान करेगा। आपराधिक संहिता के तहत किसी की सहमति के बिना उसकी इंटीमेट पिक्चर प्रकाशित करना, मैसेजेस भेजना या शेयर करना अपराध है, लेकिन अधिकांश पीड़ितों के लिए इसका हमेशा यह मतलब नहीं होता कि गैरकानूनी रूप से साझा की गई तस्वीरें तुरंत हटा दी जाएं। क्यूबेक का नया कानून पीड़ितों को ऑनलाइन या न्यायालय में एक फॉर्म भरने और न्यायाधीश से तस्वीरें या फुटेज हटाने का आदेश प्राप्त करने की अनुमति देता है। अनुपालन न करने पर कठोर दंड का सामना होगा और पहली बार अपराध करने पर प्रतिदिन $50,000 तक का जुर्माना या 18 महीने की जेल की सजा मिल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। राष्ट्रपति की घोषणा आज रात 12 बजे EDT पर लागू हुई। उन्होंने दस्तावेज में कहा कि नई दर विदेशी देशों से बेहतर तरीके से मुकाबला करेगी, जो कम कीमत वाले अतिरिक्त स्टील और एल्यूमिनियम को बेचना जारी रखते हैं, जिससे अमेरिकी बाजार में कमी आती है। इधर ऑटवा ने अतिरिक्त शुल्क को अवैध और अनुचित बताया। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग की जाने वाली सभी स्टील का लगभग 1/4 आयात किया जाता है और कैनेडा इसका सबसे बड़ा सप्लायर है। ट्रंप द्वारा स्टील पर लगाए जाने वाले इस दोगुने टैरिफ से सीमावर्ती शहर सॉ सैमरी ओंटारियो में काफ़ी चिंता पैदा हो गई है। वहाँ के मेयर का कहना है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था स्टील पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि उनकी कम्युनिटी का आधा हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्टील प्लांट पर आधारित है। मेयर ने फेडरल सरकार से अगले 2 सप्ताह के भीतर एक ठोस योजना पेश करने का आह्वान भी किया। इधर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अभी तक ये नहीं बताया है कि वे कैनेडा ट्रंप के खिलाफ टैरिफ दोगुना करने के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई करेंगे या नहीं। नवीनतम व्यापार को अनुचित और अवैध कहने के बावजूद और सीमा के दोनों ओर श्रमिकों और उद्योगों के लिए एक बुरी खबर कहने के अलावा, कार्नी ने आज पार्लियामेंट हिल पर एक कॉकस मीटिंग में जाने से पहले अगले कदमों के बारे में कुछ नहीं कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास 90 बिलियन डॉलर से अधिक के अमेरिकी आयात पर छूट से पहले हमें सकल राशि में काउंटर लेने के लिए काम करना जरूरी होगा। इधर बैंक ऑफ कनाडा ने आज अपनी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को 2.75% पर स्टेबल रखा है, क्योंकि नीति निर्माता इस बात पर अधिक स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि टैरिफ इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करेगी। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर टिफ मैकलम ने दर निर्णय जारी होने के बाद तैयार टिप्पणियों में कहा कि अभी तक अनसर्टिनिटी बनी हुई है। अर्थशास्त्रियों और वित्तीय बाजारों ने व्यापक रूप से लगातार दूसरी बार स्थिर रहने की उम्मीद जगाने की बात की है, लेकिन आज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम में आयात पर नए 50% टैरिफ की शुरुआत हुई है, जिससे चीज़ें बदल सकती हैं। टोरंटो पुलिस का कहना है कि वे लॉरेंस हाइट्स में मंगलवार रात हुई गोलीबारी के बाद कई संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए हैं। इमरजेंसी सर्विसेज को रात 8:30 बजे के बाद रेनी एवेन्यू और एलन रोड के पास फ्लेमिंगटन और जेटरी रोड के क्षेत्र में गोलीबारी की सूचना मिली थी। वहां उन्हें एक गली में कई गोली लगने वाले पीड़ितों को पाया। इसके अलावा पुलिस ने कहा है कि वे इस स्पर्क सीन पर काम कर रहे हैं। एक 40 वर्षीय व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया और 5 अन्य, 4 पुरुष और 1 महिला को हॉस्पिटलाइज किया गया है। ये थे अब तक की समाचार। ज्यादा समाचारों के लिए जुड़े रहें रेडियो हमसफर से।